अच्छा भाई, हम तरकीब कर रहे हैं भाई। आज हम मौसूफ सिफत की तरकीब करेंगे, लेकिन पहले गुज़श्ता सबक का खुलासा सुन लें जल्दी जल्दी। ये सारा सबक जो चल रहा है बार बार तकरार है, आप भी इसका बार बार तकरार करें। ये जितना आप तकरार करेंगे ये 4-6 दिन 8-10 दिन तक, इंशाल्लाह उतनी ही तेजी से आपकी तरकीब बेहतर हो जाएगी। इस तरह जहन में जम जाए कि जहन सोचना ना पड़े ज्यादा भाई, सोचना ना पड़े। और ये बार बार मश करने से चंद दिनों में आप देखेंगे कि आपकी रफ्तार बहुत तेज हो गई है। सबसे पहले हमने जुमला इस्मिया की तरकीब शुरू की थी। मैंने आपको बतलाया था कि जुमला इस्मिया के अंदर दो चीजें होती हैं, एक है मुबतदा और एक है खबर। चाहे 10 लफ्ज हों चाहे 20 लफ्ज हों, लेकिन मिलजुल कर बिल आखिर दो चीजें बनेंगी, एक मुबतदा और एक खबर। मुबतदा आसान लफ्जों में वो चीज जिसके बारे में बात की जाए, और खबर वो जो बात की जाए। मुबतदा वो जिसके बारे में बात की जाए और खबर जो बात की जाए। और मुबतदा भी मरफू होता है और खबर भी मरफू होती है। तो जैसे ही किसी लफ्ज के बारे में आपको पता चले कि यह मुबतदा है, साथ ही एक और बात का भी आपको फौरन पता चल जाता है, और वो क्या कि इस पर रफा पढ़ना है। और इसी तरह जैसे ही किसी लफ्ज के बारे में आपको पता चलता है कि यह खबर है, तो साथ ही एक और बात का भी पता चल जाता है कि इस पर कौन सा एराब पढ़ना है, रफा पढ़ना है। मुबतदा भी मरफू और खबर भी मरफू। हां, फिर आपने उसमें गौर करना है कि यह मरफू कौन सा होगा, लफ्जन तकदीरन या महलन। लफ्जन और तकदीरन ये मुअरब के अंदर आएगा, वो जो 16 किस्में पड़ी हैं आपने नहमीर के अंदर। और जो महलन एराब है वो मबनी के अंदर आएगा भाई। लिहाजा जब भी कोई लफ्ज आए, कोई इसम आए, तो सबसे पहले फौरन ये देखें कि ये मुअरब है या मबनी है। तो अगर वो मबनी है उन 8 चीजों में से कोई एक है, तो वो उस पर एराब महलन आएगा। और उन 8 में से इस वक्त कम से कम 3 तो हर वक्त आपके जहन में होने चाहिए। तमाम जमीरें, अस्माए इशारा और अस्माए मौसूला, ये 3 तो हर वक्त जहन में रखें। ये तीनों क्या हैं, मबनी हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तमाम जमीरें, नंबर 2 अस्माए इशारा, नंबर 3 अस्माए मौसूला। ये कसरत से इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही इनमें से कोई एक आए, आप फौरन समझ जाएं कि इस पर एराब महलन आएगा। फिर चाहे वो मरफू हो तो मरफू महलन होगा, मनसूब हो तो मनसूब महलन होगा, और मजरूर हो तो मजरूर महलन होगा। तो मरफू मनसूब मजरूर, मरफूआत में से हमने 2 पढ़ लिए, एक है मुबतदा और एक है खबर। और मजरूरात भी इसी तरह मैंने आपको बता दिए कि दुनिया में 2 ही चीजें मजरूर हैं, नंबर 1 जिस पर हर्फ जर दाखिल हो, और नंबर 2 मुजाफुन इलैह, यानी मुजाफ के बाद जो मुजाफ इलैह आता है वो मजरूर होता है। तो 2 ही मजरूर हैं, 2 ही मजरूर। उसके बाद आपको मैंने ये बतलाया था कि मुबतदा के अंदर असल यह है कि वो मारिफा हो, और खबर के अंदर असल यह है कि वो नकेरा हो। तो मुबतदा में असल यह है कि मारिफा हो, अलबत्ता कभी कभार मुबतदा नकेरा भी आ जाता है, लेकिन वो कुछ खास जगहें हैं, कुछ खास शर्तें हैं। और इसी तरह खबर जो है उसके अंदर असल यह है कि वो नकेरा हो, लेकिन कभी कभार खबर मारिफा भी आ जाती है। अच्छा, अब आइए आगे भाई मौसूफ सिफत की तरकीब करते हैं। याद रखो, मारिफा के बाद मारिफा आ जाए, चाहे 1 हो, 2, 3 या 4, जितने भी मारिफा आ जाएं, तो उमूमन पहला मारिफा बनेगा मौसूफ और बाद वाले बनेंगे सिफत। अगर एक मारिफा के बाद दूसरा मारिफा आ जाए या एक से ज्यादा मारिफा आ जाए तो पहला क्या बनेगा? मौसूफ, और बाकी को क्या बनाओ? सिफत बनाओ। तो मौसूफ सिफत में तारीफ और तनकीर में मुताबकत होती है। अगर मौसूफ मारिफा हो तो सिफत भी हमेशा क्या होगी? मारिफा। अगर मौसूफ नकेरा हो तो सिफत भी हमेशा क्या होगी? नकेरा होगी। नीज याद रखो, सिफत पर वही एराब आता है जो मौसूफ पर आता है। मौसूफ पर अगर रफा हो तो सिफत पर भी रफा, मौसूफ पर अगर नसब हो तो सिफत पर भी नसब, और मौसूफ पर अगर जर हो तो सिफत पर भी जर। तवज्जो है, मौसूफ अगर मारिफा हो तो सिफत भी क्या होगी? मारिफा। मौसूफ अगर मरफू हो तो सिफत भी मरफू, अगर मंसूब हो मौसूफ तो सिफत भी मंसूब, और मजरूर हो मौसूफ तो सिफत भी मजरूर। तो मारिफा, अगर एक मारिफा के बाद आगे फिर कोई एक या ज्यादा मारिफा आ जाए तो अव्वल को क्या बनाओ? मौसूफ, और बाकियों को क्या बनाओ? सिफत। इसी तरह नकेरा के बाद अगर नकेरा आ जाए एक या ज्यादा तो फिर अव्वल को बनाओ मौसूफ और बाद वालों को बनाओ सिफत। लेकिन शर्त यह है कि आखिरी नकेरा के बाद कोई मारिफा ना आए। दो या तीन नकेरा इकट्ठे आ गए तो आप फौरन मौसूफ सिफत ना बनाएं, बल्कि यह भी देखें कि कहीं आखिरी नकेरा के बाद कोई मारिफा तो नहीं आ रहा। कभी कभार आखिर में मारिफा आ जाता है, एक दो या तीन या चार नकेरा होते हैं और उसके बाद क्या आ जाता है? मारिफा। तो फिर वो आपस में मौसूफ सिफत नहीं बनते बल्कि मुजाफ और मुजाफिले बनते हैं। पहला वाला नकेरा मुजाफ होता है दूसरे की तरफ, दूसरा वाला पहले के लिए मुजाफिले बन जाता है और अगले के लिए फिर मुजाफ बन जाता है, फिर तीसरा वाला दूसरे नकेरा के लिए मुजाफिले बनता है और मा बाद के लिए मुजाफ बनता है। इस तरह तरतीब बन जाती है। बात समझ में आ गई? फिर ये जो अलामतें मैं लिखवाऊंगा और जो अलामतें मैं बता रहा हूं ये अक्सरी हैं, कुल्ली नहीं, हर जगह ऐसा ही नहीं होगा, लेकिन इसके जरिए आपकी अक्सर मिसालें हल हो जाएंगी। बाकी फिर जब आपको तरीका आ जाएगा आप खुद गौर करके उसमें तरकीब कर सकेंगे। तो मारिफा के बाद मारिफा है तो वह आपस में क्या बनेंगे? मौसूफ सिफत, और अगर नकेरा के बाद नकेरा आए तो वो भी आपस में क्या बनेंगे? मौसूफ सिफत, बशर्ते के आखिरी नकेरा के बाद कोई मारिफा न आए। अगर आखिरी में मारिफा आ जाए फिर क्या बनेंगे? मुजाफ मुजाफिले बनेंगे। अब मौसूफ सिफत के तर्जमे का तरीका समझ लो भाई, ये हर किताब में हर जगह आपको काम आएगा। याद रखो, अरबी में सिफत मुअख्खर होती है लेकिन उर्दू में सिफत मुकद्दम होती है। रजुलुन शुजाउन, रजुलुन मौसूफ, शुजाउन उसकी सिफत, शुजाउन का माना बहादुर। रजुलुन शुजाउन, देखो रजुलुन पहले है और शुजाउन सिफत बाद में, और उर्दू में इसका तर्जमा करें तो सिफत को मुकद्दम कर दें, बहादुर आदमी, बहादुर आदमी। देखो बहादुर पहले आ गया और आदमी बाद में। तो अरबी में सिफत मुअख्खर होती है और उर्दू में सिफत मुकद्दम होती है। यह एक तरीका है मौसूफ सिफत के तर्जमे का, एक तरीका। लिहाजा तर्जमा करो भाई, रजुलुन शुजाउन, बहादुर आदमी, और अर्रजुलु शुजाउ, अगर मारिफा हो अर रजुलु तो सिफत भी मारिफा आएगी, अशुजाओ अर रजुलु शुजाओ, इसका तर्जमा करेंगे वो बहादुर आदमी, क्योंकि मारिफा है ना, और मारिफा में क्या होता है? किसी खास और कोई खास और मुतायन जात मुराद होती है। रजुलुन शुजाउन का क्या माना था? सिर्फ रजुलुन शुजाउन, बहादुर आदमी, वो कोई भी हो सकता है, जैद भी, अमर, बकर, कोई भी मुराद है। यहां नकेरा है भाई, नकेरा भाई, कोई मुतायन जात नहीं मुराद यहां। लेकिन जब मैं कहूं अर रजुलु शुजाउ, मालूम है मैं किसी मुतायन शख्स की तरफ इशारा कर रहा हूं, और क्या कह रहा हूं? वो बहादुर आदमी। मुतकल्लिम किसी की तरफ इशारा कर रहा है और सुनने वाले समझ रहे हैं कि किसकी तरफ इशारा है। अगर वो नहीं समझ रहे फिर तो ये मारिफा है ही नहीं। फिर चलो अलिफ लाम की किस्में भी सुन लो एक दफा, आपने कई दफा पढ़ी होंगी। याद रखो अलिफ लाम दो किस्म पर है, एक अलिफ लाम इस्मी है और एक अलिफ लाम हर्फी। अलिफ लाम इस्मी वो है जो इसमें फाइल और इसमें मफूल के सीगों पर दाखिल हो। अज़ारिब, ये जारिब कौन सा सीगा है? इसमें फाइल, इसमें फाइल, जो वो जो गर्दानों में आपने सीगे पढ़े हैं, जारिबुन, मानिउन, फातिहुन, मुकरिमुन, मुस्तखरिजुन वगैरह, ये क्या है? इसमें फाइल। और इसमें मफूल वो जो गर्दानों में आपने मखसूस सीगे पढ़े हैं, मजरूबुन, मंसूरुन, मफतूहुन, मुकरमुन, मुस्तखरजुन, मुकातलुन, मुकर्रमुन, ये सारे क्या हैं? इसमें मफूल। तवज्जो है? तो इसमें फाइल और इसमें मफूल के सीगों पर जो अलिफ्लाम दाखिल हो उसको अलिफ्लाम इस्मी कहते हैं। याद रखो ये जो अलिफ्लाम इस्मी होता है ये दर असल इसम है, ये इसमें मौसूल है। अज़ारिब, अज़ारिब, ये अलिफ्लाम क्या है? इसम। सूरत हर्फ जैसी है लेकिन है क्या? इसम है, ये इसमें मौसूल है, इसमें मौसूल है। चुनांचे काफिया में आपने पढ़ा होगा जहां पर अस्माए मौसूला की बहस आती है वहां वो बाकायदा अस्माए मौसूला में अलिफ लाम को शुमार करते हैं कि ये भी क्या है? इसमें मौसूल। तो अज़ारिब, ये अलिफ लाम कौन सा है? इस्मी, और ये दरअसल क्या है? इसमें मौसूल। और अज़ारिब बमाना है अल्लज़ी यज़रिबु, अज़ारिब अलिफ लाम बमाने अल्लज़ी और ज़ारिब बमाने यज़रिबु के है। तो अज़ारिब का क्या माना हुआ? अल्लज़ी यज़रिबु, वो जो पिटाई करता है, वो जो पिटाई करता है। और इसी तरह अल मज़रूब, इसमें ये अलिफ लाम ये भी क्या है? इस्मी है, यानी इसमें मौसूल है। तो अल मज़रूब बमाने अल्लज़ी यज़रबु के है, वो जिसकी पिटाई की जाती है। तवज्जो है? तो अलिफ लाम इस्मी कौन सा है? जो इसमें फाइल और इसमें मफूल के सीगों पर दाखिल होता है और ये दरअसल इसमें मौसूल है। तो अज़ारिब किस माना में? अल्लज़ी यज़रिबु। और अल मज़रूब किस माना में? अल्लज़ी युज़रबु। अल फातिह किस माना में? अल्लज़ी यफ्तहु। और अल मफ्तूह किस माना में? अल्लज़ी युफ्तहु। बात समझ में आ गई? तो ये अलिफ लाम इस्मी दर असल इसम है। दूसरी किस्म है अलिफ लाम हर्फी, इसमें फाइल और इसमें मफूल के सीगों के अलावा किसी लफ्ज पर भी जो अलिफ लाम आता है वो दरअसल अलिफ लाम हर्फी है। भाई तवज्जो है? अलिफ लाम हर्फी है। और अलिफ लाम हर्फी जो है याद रखो इसके जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाता है। अलिफ लाम हर्फी के जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाता है। फिर वो इशारा माहियत और जिंस और हकीकत की तरफ भी हो सकता है। माहियत, जिंस, हकीकत एक ही चीज है। अलिफ लाम हर्फी के जरिए किसी चीज की तरफ क्या किया जाता है? इशारा किया जाता है। और ये जिस लफ्ज पर दाखिल होता है उसको मारिफा बना देता है। जैसे अल कलिमतु, इस पर अलिफ लाम आ गया और कलिमा इसमें फाइल या इसमें मफूल है नहीं, मालूम हो ये अलिफ लाम कौन सा है? हर्फी है। और ये अलिफ लाम हर्फी क्या होता है? इसके जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाता है और ये जिस लफ्ज पर दाखिल होता है उसको मारिफा बना देता है, मारिफा बना देता है। जबकि वो अलिफ लाम इस्मी जो था वो खुद मारिफा था, वो किसी और को मारिफा नहीं बनाता, वो इसमें मौसूल था। और मारिफा की अकसाम में अस्माए मौसूला पढ़े या नहीं आपने? तो वो इसमें मौसूल, वो खुद मारिफा था। अज़ारिब, ये अलिफ लाम ने ज़ारिब को मारिफा नहीं बनाया, ये अलिफ लाम खुद ही क्या है? मारिफा है। जबकि अल कलिमा में इस अलिफ लाम ने लफ्ज़ कलिमा को क्या बना दिया? मारिफा बना दिया। तो अलिफ लाम हर्फी वो है जिसके जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए, और इशारा जिंस और माहियत की तरफ भी हो सकता है और अफराद की तरफ भी। तवज्जो है? जिंस और माहियत किसी चीज की जो हकीकत होती है, यूं को किसी चीज का जो मटेरियल है जिससे वो चीज बनी है उसको, उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है और अफराद की तरफ भी इशारा हो सकता है। किसके जरिए? अलिफ लाम हर्फी। अगर इशारा हो जिंस की तरफ तो उसको अलिफ लाम जिंसी कहेंगे। अलिफ लाम जिंस, ये वही अलिफ लाम हर्फी की तकसीम चल रही है। अलिफ लाम हर्फी के जरिए क्या होता है? किसी चीज की तरफ इशारा। इशारा जिंस और हकीकत की तरफ भी हो सकता है और अफराद की तरफ भी हो सकता है। जैसे इंसान, इंसान की हकीकत क्या है? हैवान नातिक। और इंसान के अफराद कौन हैं? जैद, अमर, बकर, खालिद और आप सारे, ये सब क्या हैं? इंसान के अफराद। तो हकीकत इंसान की क्या है? हैवान नातिक। और अफराद कौन हैं? जो खारिज में इंसान मौजूद हैं। तो अलिफ लाम हर्फी के जरिए किसी चीज की तरफ इशारा होता है और यह इशारा जिंस और माहियत और हकीकत की तरफ भी हो सकता है और अफराद की तरफ भी। अगर इशारा जिंस और हकीकत की तरफ और माहियत की तरफ हो तो इसको अलिफ लाम जिंसी कहते हैं। अगर अफराद की तरफ हो तो फिर यह दो हाल से खाली नहीं, इसमें दो सूरतें हैं, या तो तमाम अफराद को इशारा होगा या बाज को। अगर तमाम अफराद को इशारा हो तो इसको अलिफ लाम इस्तिगराकी कहते हैं। इस्तेगराक का माना याद रखो, फिर मुश्किल पेश नहीं आएगी। इस्तेगराक का माना है घेर लेना। यह भी क्या कर लेता है? उस माहियत के तमाम अफराद को घेर लेता है, सारे मुराद होते हैं इससे। तो अलिफ लाम के जरिए अगर अफराद की तरफ इशारा हो तो तमाम अफराद को इशारा होगा या बास को। अगर तमाम को इशारा हो तो यह अलिफ लाम इस्तेगराकी। अगर बाज की तरफ इशारा हो तो वो बाज खारिज में मुतायन होंगे या मुतायन नहीं होंगे। अगर वो बाज अफराद खारिज में मुतायन हैं तो इसको अलिफ लाम अहदे खारिजी कहते हैं। इसको अलिफ लाम अहदे खारिजी कहते हैं। अहद का माना है मुतायन होना। अहदे खारिजी क्या माना? जो खारिज में मुतायन है। और अगर खारिज में मुतायन नहीं तो फिर वह अलिफ लाम अहदे जहनी है, यानी जो जहन में मुतायन है। फिर दोहरा लें भाई, फिर दोहरा लें। अलिफ लाम की दो किस्में, एक अलिफ लाम इस्मी। अलिफ लाम इस्मी वो है जिसमें फाइल और इसमें मफूल के सिगों पर दाखिल हो और ये दरअसल इसमें मौसूल है। तो अज़ारिब किस माना में? अल्लज़ी यज़रिबु। और अल मज़रूब किस माना में? अल्लज़ी युज़रबु। जबकि दूसरा अलिफ लाम हर्फी है। अलिफ लाम हर्फी वो है जिसके जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए और ये जिस लफ्ज़ पर दाखिल होता है उसको मारिफा बना देता है। अगर इशारा जिंस और हकीकत की तरफ हो तो इसको क्या कहेंगे? अलिफ लाम जिंसी। और अगर अफराद की तरफ हो तो फिर तमाम अफराद मुराद होंगे या बाज। अगर तमाम अफराद मुराद हों तो यह अलिफ लाम इस्तिगराकी है। और अगर बाज मुराद हैं तो फिर वो बाज खारिज में मुतायन हैं या मुतायन नहीं। अगर वो खारिज में मुतायन हैं तो वह अलिफ लाम अहदे खारिजी। और अगर खारिज में मुतायन नहीं वो बाज तो वह अलिफ लाम अहदे जहनी है। मिसालों से देखो बात और वाजे हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूं अर रजुलु खैरुम मिनल मरअती। अर रजुलु खैरुम मिनल मरअती। तो याद रखो ये अलिफ लाम जिंसी है। सबसे पहले ये देखो अर रजुल और अल इमरा पर अलिफ लाम दाखिल है जी। रजुल इसमें फाइल है, इसमें मफूल का सिगा है नहीं, मालूम है ये अलिफ लाम हर्फी है। अल इमरा इसके अंदर भी अलिफ लाम इसमें फाइल है, इसमें मफूल पर नहीं दाखिल हो रहा, तो मालूम हुआ ये भी अलिफ लाम कौन सा है? हर्फी है। ये दोनों अलिफ लाम हर्फी हैं। और अलिफ लाम हर्फी के बारे में तो अभी आपने पढ़ा, उसके जरिए क्या किया जाता है? किसी चीज की तरफ इशारा होता है और ये जिस लफ्ज पर दाखिल होता है उसको क्या बना देता है? मारिफा। अब ये इशारा किसकी तरफ है? तो याद रखो यहां इशारा है जिंस और हकीकत की तरफ और माहियत की तरफ। अर रजुलु जिनसे रजुल जो है खैरुन ये अफजल है, बेहतर है। मिनल मरअती अर रजुल खैरु मिनल मरअत। तो जिनसे रजुल बेहतर है, अफसल है, मिनल मरअती जिनसे औरत से। देखो यहां अफराद नहीं मुराद हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि रजुल के अफराद बेहतर हैं इमरा के अफराद से। जो खारिज में मर्द हैं वो बेहतर हैं किससे? खारिज में जो औरतें हैं उनसे नहीं भाई। इसलिए क्योंकि फिर यह कलाम दुरुस्त नहीं रहता। देखो एक ईमान वाली औरत है, और एक काफिर मर्द है, कौन अफजल है? ईमान वाली औरत अफजल है, फिर तो ये कलाम गलत हो जाएगा। या इसी तरह एक नेक औरत है और एक फासिक मर्द है, कौन अफजल है? नेक औरत अफजल है, तो फिर तो ये कलाम दुरुस्त ना रहेगा। मालूम हुआ यहां अफराद मुराद नहीं, अफराद की तरफ इशारा नहीं, बल्कि किसकी तरफ है? जिन्स हकीकत और माहियत की तरफ है। तो माना क्या हुआ कि जिन्स रजुल, ये जो मर्द है इस जिन्स को फजीलत है, किस पर? जिन्स औरत पर। मर्दों को अल्लाह ने फजीलत दी है, दुनिया के अंदर उनको ताकत नसीब फरमाई है, भाई उनको फजीलत है। तो आप भी देखते हैं दुनिया में लोग क्या चाहते हैं, उनके हां बेटे ज्यादा हों या बेटियां ज्यादा हों? बेटे ज्यादा हों भाई। इसी तरह अंबिया जो है वो भी सारे मर्द थे, तो जिनसे रजुल को क्या है? जिनसे इमरा पर फजीलत हासिल है। तो अर रजुल खैरुम मिनल मरअती, अर रजुल में जो अलिफ्लाम है ये कौन सा है? अलिफ्लाम जिनसी। इसी तरह अली मरा पर जो अलिफ्लाम है वो भी कौन सा है? जिनसी है। तो जिनसे रजुल अफजल है किससे? जिनसे इमरा से भाई। और कभी कभार इस अलिफ्लाम हर्फी के जरिए तमाम अफराद की तरफ इशारा होता है, जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, इन्नल इंसाना, ये अल इंसान पर अलिफ्लाम दाखिल है। और याद रखो ये अलिफ्लाम इस्तिगराकी है, इसके जरिए इशारा है तमाम अफराद इंसान की तरफ। इन्नल इंसान लफी खुसर, तमाम अफराद इंसान खसारे में हैं। इन बेशक कह लो या यकीनन के साथ तर्जमा कर लो, यकीनन तमाम इंसान खसारे में हैं, नुकसान में हैं। यहां देखो अब मैं तर्जमा क्या कर रहा हूं, तमाम इंसान। कोई आपको कहे एतराज करे कि अल इंसान यहां पर तो कुल्लू इंसान का लफज नहीं है, फिर ये तमाम आप किस चीज का तर्जमा कर रहे हैं? तो आप क्या कहेंगे कि मैं ये अलिफ्लाम का तर्जमा कर रहा हूं। यह अलिफ्लाम कौन सा है? इस्तिगराकी, और उसका तर्जमा तमाम और कुल के साथ किया जाता है। तो तमाम अफराद इंसान खसारे में हैं, ये अलिफ्लाम इसको इस्तिगराकी लेना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आगे इस्तिस्ना आ रहा है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। तो ये इस्तिस्ना तभी सही होगा जब पहले तमाम इंसानों के बारे में एक बात जिक्र की जाए, तमाम इंसान खसारे में है सिवाय इनमें से वो लोग जो ईमान लेकर आए, वो खसारे में नहीं है। तो ये अलिफ्लाम कौन सा हुआ? इस्तिगराकी, और इसका तर्जमा तमाम और कुल के साथ किया जाता है। और तीसरी किस्म है अलिफ्लाम अहदे खारिजी। अलिफ्लाम अहदे खारिजी वो है जिसके जरिए बाज अफराद की तरफ इशारा हो और वो अफराद खारिज में मुतायन हो। मसलन मैं आपसे कहता हूं जा अनी रजुलुन अमसी, कल मेरे पास कोई एक आदमी आया था, आप उसको नहीं जानते, आपको उसका इलम नहीं। जब आप उसको नहीं जानते तो मैं अब रजुल का लफ्ज लाऊंगा नकेरा, क्योंकि मारिफा वो है जिसकी आपको पहचान हो और नकेरा वो है जिसकी आपको पहचान ना हो। तो मैं आपसे पहले नकेरा जिक्र करता हूं, जानी रजुल उन आमसी, मेरे पास कल एक आदमी आया था या कोई आदमी आया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने उस आदमी का इकराम किया, उस आदमी का। तो अब एक दफा जब चीज जिक्र हो गई, अब आगे मैं कहता हूं तो फिर मैंने उस आदमी का इकराम किया, उस आदमी। देखो मैं इशारा कर रहा हूं या नहीं कर रहा, और आप समझ गए या नहीं समझ गए कौन सा आदमी मुराद है? आप समझ गए, वही आदमी जो कल आया था जिसका अभी जिक्र हुआ। अगरचे आपको उसके नाम का भी नहीं पता, आपको उसकी शक्ल का भी नहीं पता, आपने उसको देखा भी नहीं है, तो मुतायन होने का यह माना नहीं कि एक चीज को आपने देखा हो या सर, हां मुतायन होने का यह माना है कि एक चीज को जब जिक्र किया जाए आप समझ जाए किसकी बात हो रही है, वो कौन सी चीज है। जानी रजुल नाम सी, कल मेरे पास एक आदमी आया था, अकरम तो अर रजुला, तो मैंने उस आदमी का इकराम किया। तवज्जो है, मैंने उस आदमी का इकराम किया। आप समझ गए या नहीं समझ गए? उस आदमी, देखो मैं इशारा कर रहा हूं, और तो यह किस आदमी की तरफ इशारा है? जो कल आया था। तो एक दफा जब चीज जिक्र हो जाए तो वह मुतायन हो जाती है। अब देखो मैं आगे उस आदमी, ये उस तो इशारे के लिए आता है, मैं आपसे अरबी में क्या कह रहा हूं, जानी रजुलुन अमसी, कल मेरे पास कोई एक आदमी आया था, फअकरमतु अर्रजुला, फअकरमतु अर्रजुला, तो मैंने उस आदमी, तो कोई एतराज करे कि अर्रजुल है ये, उस आप कहां से ले आए, फअकरमतु अर्रजुला, फअकरमतु अर्रजुला, फअकरमतु अर्रजुला, तो मैंने उस आदमी का इकराम किया, कोई आप पर एतराज करे कि ये उसका लफ्ज आप कहां से ले आए, तो आप क्या कहेंगे, ये मैं किसका तर्जमा कर रहा हूं, ये अलिफ लाम का, क्योंकि अलिफ लाम के जरिए इशारा होता है, और ये इशारा है तमाम अफराद की तरफ या बाज की तरफ, बाज की तरफ, वो बाज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मसलन मैं आपसे कहता हूं कल मेरे पास दो आदमी आए थे, जानी रजुलानी अमसी, फअकरम तो रजुलैनी, तो मैंने उन दो आदमियों का देखा, अर रजुलैनी, वो दो आदमी, जी इशारा है जिंस की तरफ या अफराद की तरफ, और तमाम अफराद या बाज अफराद, बाज अफराद को जमा भी हो सकते हैं। जानी रिजालुन अमसी, कल मेरे पास कुछ आदमी आए थे, फअकरमतु रिजाला, तो मैंने उन आदमियों का इकराम किया, तीन थे, चार थे, पांच थे, जितने भी थे उन सब की तरफ इशारा हो गया। तो बाज का लफ्ज आम है, इसमें एक भी दाखिल, दो भी दाखिल, और दो से ज्यादा भी, हां ये कुल नहीं है, क्योंकि कुल और बाज एक दूसरे की जिद हैं, कुल का माना सारे और बाज का माना कुछ भाई, उनमें से कुछ भाई। तो अलिफ लाम की किस्में समझ में आ गई, तो अलिफ लाम हर्फी या तो उसके लिए इशारा होगा किसकी तरफ, जिंस की तरफ, और या अफराद की तरफ, अगर जिंस की तरफ इशारा हो उसे क्या कहेंगे, अलिफ लाम जिंसी, अगर अफराद को इशारा हो तो फिर उसके दो सूरतें, या तो तमाम अफराद को इशारा होगा या बास को, अगर तमाम को इशारा है तो वो अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी, अगर बास को इशारा है तो वो बास खारिज में मुतायन होंगे या मुतायन नहीं, अगर वो खारिज में मुतायन है तो वो अहदे खारजी, और अगर खारिज में मुतायन नहीं तो अहदे ज़हनी। देखा कल मेरे पास एक आदमी आया था, ये खारिज में एक आदमी मुतायन है, फअकरमतु रजुला, तो मैंने उस आदमी का इकराम किया, देखो खारिज में वो एक फर्द मुतायन है, या अकरमतु रजुलैनी, तो मैंने उन दो आदमियों का इकराम किया, देखो वो दो मुतायन है, या फअकरमतु रिजाला, मैंने उन सब आदमियों का इकराम, देखो वो मुतायन है भाई। तो ये इसको अलिफ लाम अहदे खारिजी कहते हैं, कि वो बाज जो है खारिज में मुतायन हो उनकी तरफ इशारा हो। और आखिरी किस्म है अलिफ लाम महदे ज़हनी, अगर वो बाज जिनकी तरफ इशारा किया गया है वो खारिज में मुतायन न हो तो वो अलिफ लाम अहदे ज़हनी है, अलिफ लाम अहदे ज़हनी है। और इसकी मिसाल कुरान में है बड़ी प्यारी भाई, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास उनके बेटे आए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि इनको हमारे साथ भेज दें जंगल में खेलने के लिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी, इनके महबूब बेटे थे, और जो बाकी भाई थे वो हसद करते थे कि इस बेटे से इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं वालिद साहब। चुनांचे उन्होंने इरादा किया कि इनको जंगल में ले जाएं, इनसे कत्ल करें या इनसे जान छुड़वाएं किसी तरह। चुनांचे वालिद साहब के पास आए और कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ भेज दीजिए। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे भाई, इन्नी अखाफु अन याकुलहु ज़िब्बु, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इन्नी अखाफु अन याकुलहु ज़िब्बु, मुझे खौफ है, अन याकुलहु कि इस इनको यानी यूसुफ को खा लेगा, अज़िब्बु, अज़िब्बु पर भेड़िए को कहते हैं, इस पर अलिफ लाम दाखिल है, और याद रखो ये अलिफ लाम महदे ज़हनी है भाई, अलिफ लाम महदे ज़हनी है भाई, अलिफ लाम महदे ज़हनी, याद रखो ये जिस लफ्ज़ पर दाखिल होता है उसको मारिफा तो बना देगा, अज़िब का लफ्ज़ मारिफा तो है क्योंकि इस पर क्या दाखिल है, अलिफ लाम, लफ्जों के एतबार से यह मारिफा है लेकिन माना के एतबार से यह नकिरा है, और इसका नकिरा वाला तर्जमा करेंगे, रजुल का क्या माना था,
कोई आदमी,
कोई आदमी, और अर रजुल का माना वो आदमी, वो आदमी, कोई खास आदमी है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है अलिफ लाम के जरिए। तो यहां पर भी एक है ज़िबुन और एक है अज़िबु। ज़िबुन का क्या माना? कोई भेड़िया। और अज़िबु का क्या तर्जमा? वो भेड़िया होना चाहिए। लेकिन यह अलिफ लाम कौन सा है? अहदे ज़हनी है। और अहदे अलिफ लाम अहदे ज़हनी ने लफ्ज को तो मारिफा बना दिया, लेकिन माना में अभी भी यह क्या है? नकिरा। लिहाजा इसका वही नकिरा वाला तर्जमा करो। अज़िबु का क्या तर्जमा होगा यहां? कोई भेड़िया। इन्नी अखाफु, मुझे यह खौफ है, अकुलहु ज़िबु, कि इनको कोई भेड़िया खा जाएगा। देखो बेहतरीन तर्जमा हो गया या नहीं? आप खुद जरा गौर कर लें, मुझे बताइए। अज़िबु पर अलिफ लाम आया, ये इस्मी है या हर्फी है? इसमें फाइल है, इसमें मफूल का सीगा है नहीं, मालूम है यह अलिफ लाम हर्फी है। यह आप चंद दिन मश करेंगे, आप देखेंगे आपको फौरन पता चलता जाएगा। तो यह अलिफ लाम इस्मी नहीं है। अच्छा, अलिफ लाम हर्फी है, तो अलिफ लाम हर्फी के जरिए या तो इशारा होता है जिंस की तरफ या अफराद की तरफ। तो यह अलिफ लाम जिंसी है? अलिफ लाम जिंसी नहीं है। किसी चीज की हकीकत और माहियत या जिंस जो जो उसका मटेरियल होता है वो नहीं किसी चीज को खाता, बल्कि उसके अफराद, भेड़ियों को, भेड़िए की जो मटेरियल है उसकी हकीकत है वो नहीं चीजों को खाती। भेड़िए के जो खारिज में अफराद हैं वो क्या करते हैं? चीजों को खाते हैं। जैसे हैवान नातिक, इंसान की हकीकत क्या है? तो हैवान नातिक, ये जो इंसान की हकीकत है, ये लोगों की मदद नहीं करती, बल्कि इंसान के जो खारिज में अफराद हैं वो एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो अज़िबु, इसमें मालूम हुआ अलिफ लाम इस्मी नहीं और फिर हर्फी है। तो हर्फी में फिर हमने गौर किया कि अलिफ लाम जिंसी है कि नहीं, तो आपने देखा कि अलिफ लाम जिंसी नहीं, क्योंकि क्या फरमा रहे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम? इन्नी अखाफु अन याकुलहु अज़िबु, मुझे खौफ है कि इनको भेड़िए की माहियत खा जाएगी, उसकी जो जिन्स है वो हकीकत है वो खा जाएगी। नहीं भाई, हकीकत भेड़िए की जो हकीकत है और माहियत है वो चीजों को नहीं खाती, बल्कि उसके अफराद खाते हैं जो खारिज में मौजूद हैं। मालूम यह अलिफ लाम जिंसी भी नहीं। इससे अफराद मुराद हैं, तो इससे तमाम अफराद मुराद हैं या बास? अगर तमाम अफराद मुराद हों तो अलिफ लाम कौन सा है? इस्तिग़राक़ी। फिर क्या तर्जमा होगा? मुझे यह खौफ है कि इनको तमाम भेड़िए मिलकर खा जाएंगे। भाई दुनिया, सारी दुनिया के भेड़िए वहां इकट्ठे हो सकते थे? नहीं भाई, कोई दुनिया के किस किनारे में है, कोई किस किनारे में। तो मालूम हुआ अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी भी नहीं। मालूम हुआ तमाम अफराद भी नहीं मुराद, तो फिर बाज़ अफराद मुराद होंगे। वो बाज़ भी अगर खारिज में मुतय्यन हो तो अलिफ लाम अहदे खारिजी, अहदे खारिजी। अगर अलिफ लाम अहदे खारिजी हो, मालूम हुआ खारिज में कोई खास भेड़िया मुराद था, और उस सूरत में तर्जमा यह होगा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुझे खौफ है कि वो भेड़िया जो है, किसी मुतय्यन भेड़िए की तरफ इशारा किया, वो भेड़िया इनको खा जाएगा। कोई मुतय्यन भेड़िया था वहां पर? नहीं। मालूम हुआ यह अलिफ लाम अहदे खारिजी भी नहीं। तो आखिरी सूरत यही है कि यह अलिफ लाम अहदे ज़हनी हो। अलिफ लाम अहदे ज़हनी यह है, अहद का क्या माना? मुकर्रर होना। क्या होना? अहदे ज़हनी, यानी खार ज़हन में भेड़िए का कोई उसकी जिंस का एक फर्द तसव्वुर कर लिया और अलिफ लाम के जरिए उसकी तरफ इशारा कर दिया। और यह मैंने बताया, लफ्जों में तो मारिफा बन जाता है, लेकिन माना के एतबार से क्या है? नकेरा का नकेरा ही है। लिहाजा इसका तर्जमा नकेरा वाला करेंगे। इन्नी अखाफु अन याकुलहु ज़िबु। यहां तक बात समझ में आ गई? अलिफ लाम की सारी किस्में पता चल गई। तो मालूम हुआ कि अलिफ लाम के जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाता है। तो बात चल रही थी रजुलुन शुजाउन और अर रजुलु शुजाउ, मौसूफ सिफत की। रजुलुन शुजाउन, मैंने बताया अरबी में सिफत मुअख्खर होती है लेकिन उर्दू में सिफत मुकद्दम, और नकिरा की सिफत नकिरा आती है और मारिफा की सिफत मारिफा। जी रजुलुन शुजाउन तर्जमा करो, बहादुर आदमी, शाबाश। अर रजुलु शुजाउ, दोनों मारिफा आ गए, वो बहादुर आदमी। देखो इतनी लंबी मैंने तकरीर की, अलिफ लाम की सारी किस्में आपको बताई। क्यों? क्योंकि आपके जहन में आएगा अर रजुलु शुजाउ, वो बहादुर आदमी। ये वो कहां से आप ले आए? अब आपको बात समझ में आ गई, ये किसका तर्जमा हुआ, अलिफ लाम का। अर रजुल के जरिए किसी मुतअय्यन आदमी की तरफ मैं इशारा करके आपको बता रहा हूं कि वो क्या है, बहादुर। तो अर रजुलु शुजाउ, तर्जमा करो, वो बहादुर आदमी, वो बहादुर आदमी। अब इसमें फिर याद रखो, ये एक तरीका है मौसूफ सिफत के तर्जमे का, और ये मुख्तसर है। जहां मौसूफ सिफत आ जाए, आप उर्दू में सिफत को क्या कर दो, मौसूफ पर मुकदम कर दो। लेकिन बाज जगह ये मुश्किल हो जाता है, तो वहां फिर दूसरा तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है मौसूफ सिफत के तर्जमा करने का, कि मौसूफ सिफत अगर नकेरा है, पहला तरीका क्या था, रजुल शुजाउन, क्या तरीका था, बहादुर आदमी, सिफत को आपने क्या कर दिया, मुकदम। दूसरा तरीका यह है कि तरतीब न बदलो, अरबी में मौसूफ मुकदम है, उर्दू में भी मौसूफ को मुकदम रखो, अलबत्ता उससे पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज ले आओ, ऐसा या ऐसी। रजुलन शुजाउन, ऐसा आदमी जो के बहादुर है, ऐसा आदमी जो के बहादुर है। यह था नकेरा में, नकेरा में दूसरा तरीका क्या है, मौसूफ से पहले क्या ले आओ, ऐसा या ऐसी। और मारिफा में तरीका यह है कि वो या उस, ये इस जैसा कोई लफ्ज ले आओ जिससे इशारा हो। अर रजुल शुजाउ, तर्जमा करो, वो आदमी जो के बहादुर है। देखो, आदमी को पहले ही रखा और बहादुर को अभी भी मैं आखिर में। अर रजुल शुजाउ, मुकदम कौन है अरबी में, अर रजुल मर्द, और अशुजाउ क्या है, मुअख्खर। उर्दू में भी इसी तरह करो, वो आदमी जो के बहादुर है, और नकेरा हो रजुल शुजाउन, फिर ऐसा आदमी जो के बहादुर है। तरीके समझ में आ गए जी, अब मुझे करके दिखाओ तर्जमा। रजुलन शुजाउन, पहला तरीका बहादुर आदमी। रजुलन शुजाउन, दूसरा तरीका ऐसा आदमी, बहादुर को नहीं लाना मुकदम, ऐसा आदमी जो के बहादुर है, ऐसा आदमी जो के बहादुर है। अब मारिफा में आ जाओ, अर रजुलु शुजाउ, पहला तरीका वो बहादुर आदमी, बहादुर को आप मुकदम ले आए। दूसरा तरीका, वो आदमी जो के बहादुर है, वहां था ऐसा आदमी, यहां क्या है, वो आदमी, वो आदमी जो के बहादुर है। तरीका अच्छी तरह समझ में आ गया, फिर दोहराओ। रजुलन शुजाउन, पहला तरीका बहादुर आदमी, दूसरा तरीका ऐसा आदमी जो के बहादुर है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ऐसा आदमी जो के बहादुर है, ये पूरा जुमला है या अधूरा जुमला है? जी जी हां, पूरा जुमला है। तुलबा उमूमन है और था को देखते हैं, जहां आखिर में है आ जाए कहते हैं ये पूरा जुमला है, हालांकि ये पूरा जुमला नहीं है, ये मौसूफ सिफत का तर्जमा मैं कर रहा हूं। जुमला उसको कहते हैं जिसमें बात पूरी हो, इसमें बात पूरी है नहीं। वो आदमी जो के बहादुर है, वो आदमी जो के बहादुर है, मैं 10 दफा कहता रहा हूं, आप कहेंगे बात तो पूरी करें, वो ऐसा आदमी जो बहादुर है उसको क्या हुआ, मर गया है, जिंदा है, चला गया है, आ गया है, बात तो पूरी करें। ये तो मैं आपको सिर्फ उस आदमी की पहचान करवा रहा हूं, ऐसा आदमी जो के बहादुर है वो मेरा दोस्त है। अब देखो बात पूरी हो गई या नहीं। और इसी तरह अर रजुल शुजाउ, पहला तरीका अर रजुल शुजाउ, वो बहादुर आदमी, दूसरा तरीका वो आदमी जो के बहादुर है। ये पूरा जुमला है कि नहीं, नहीं है भाई, बात समझ में आ गई। वो आदमी जो के बहादुर है, मैं 10 दफा भी कहूं आपके सामने, आप कहेंगे हमें बात नहीं समझ में आई, बात पूरी करें आप। वो आदमी जो के बहादुर है, वो आया है या चला गया है, पूरी बात करें। तो है या था वगैरह से आपने धोखे में नहीं पड़ना, आपने उस बात पर गौर करना है कि इसमें बात पूरी है या पूरी नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आइए तरकीब करें भाई, लिखिए भाई, तरकीब कीजिए। बल्कि पहले जाबता लिख लो जल्दी जल्दी भाई, ये फिर आपको दोहराने में आसानी होगी। जाबता मारिफा के बाद अगर मारिफा आ जाए, जल्दी जल्दी लिखिए भाई, मारिफा के बाद अगर मारिफा आ जाए, चाहे एक हो या ज्यादा, चाहे एक हो या ज्यादा, तो अव्वल उमूमन मौसूफ बनेगा, तो अव्वल उमूमन मौसूफ बनेगा, और बाद वाले सिफत, और बाद वाले सिफत। अगला जाप्ता, अगर एक नकिरा के बाद, अगर एक नकिरा के बाद आगे दोबारा एक या एक से ज्यादा, आगे दोबारा एक या एक से ज्यादा नकेरा आ जाए, ज्यादा एक या एक से ज्यादा नकेरे आ जाए, तो अव्वल मौसूफ बनेगा और बाद वाले सिफत, तो अव्वल मौसूफ बनेगा और बाद वाले सिफत, बशर्ते के आखिरी नकेरा के बाद, बशर्ते के आखिरी नकेरा के बाद कोई मारिफा न आए, बशर्ते के आखिरी नकेरा के बाद कोई मारिफा न आए, वरना उमूमन मुजाफ मुजाफिले बनेंगे, वरना उमूमन मुजाफ मुजाफ इले बनेंगे। अगली सतर में लिखिए, मौसूफ सिफत के तर्जमा करने का, मौसूफ सिफत का तर्जमा करने का तरीका यह है कि कि सिफत को उर्दू में मुकद्दम कर दें, कि सिफत को उर्दू में मुकद्दम कर दें। दूसरा तरीका यह है कि मौसूफ को मुकद्दम ही रखें, और सिफत को मुअख्खर ही रखें, अलबत्ता नकेरा के अंदर मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज ले आएं, और मारिफा के अंदर मौसूफ से पहले, और मारिफा में मौसूफ से पहले वो या उस जैसा लफ्ज ले आएं, मौसूफ से पहले वो या उस जैसे लफ्ज ले आएं। तो रजुलुन शुजाउन का एक तर्जमा होगा बहादुर आदमी, और दूसरा तर्जमा होगा ऐसा आदमी जो के बहादुर है। और अर रजुलु अश्शुजाउ का तर्जमा होगा वो बहादुर आदमी या दूसरा तर्जमा या दूसरा तर्जमा, वो आदमी जो के बहादुर है, वो आदमी जो के बहादुर है। लिख लिया जी, तफसील मुकम्मल हुई। अब तरकीब करते हैं, लिखिए भाई जुमला। जैद रजुल आलिम, एराब मैं नहीं बोल रहा, एराब आपने मुझे फिर बताने। जैद रजुल आलिम। अब जो जो हम आगे चलेंगे जुमले लंबे होते जाएंगे। अभी तक दो लफ्जों के जुमले आपने किए, अब दो से ज्यादा हो गए। जैद रजुल आलिम। चलिए भाई तरकीब कीजिए भाई। भाई एराब हम हल कर रहे हैं, पहले एराब उसके बाद फिर क्या है वो आखिर में बताना है। जैद का एराब बोलो, मंसूब है, मजरूर है, मरफू है, वो बताओ। जैदुन मरफू, मरफू कौन सा, लफ्जन तकदीरन महलन। जी जैदुन, सब ने इसी तरह बताना है, तवज्जो से सुनते जाओ भाई, बार बार तरतीब बताने की जरूरत ना हो। सबसे पहले क्या बताना है, एराब, फिर बताना है लफ्जन है, तकदीरन है या महलन, और फिर आखिर में बताना है कि ये क्या बन रहा है, मुब्तदा है, खबर है, फाइल है, मफूल है, वो बताना है। जी कीजिए तरकीब। जैदुन मरफू, मरफू लफ्जन मुब्तदा, शाबाश। मरफू क्यों, मुब्तदा है, क्योंकि मुब्तदा है। लफ्जन क्यों कहा आपने, इसके एराब या यूं कहो इसके रफा पर हम क्या कर रहे हैं, तलफुज कर रहे हैं। करके दिखाओ इसके रफा पर तलफुज। जैदुन, इसके नसब पर तलफुज करो। जैदन, जर पर करो। जैदिन, मालूम हुआ इस पर तीनों तरह के एराब लफ्जी आते हैं। एराब लफ्जी का क्या माना, एराब लफ्जी नहीं, वजाहत करें, एराब लफ्जी किसको कहते हैं, किसी को समझाना पड़े आप उसको क्या बताएंगे, जिसके एराब, जिस एराब पर हम जुबान से क्या करें, तलफुज करें, वो है एराब लफ्जी। सुनने से ही पता चल जाए, जैदन मैंने क्या पढ़ा, नसब देखा, तलफुज से ही आपको पता चल गया। तो जैदुन मरफू लफ्जन, और आपने क्या कहा, मुब्तदा। अच्छा मुब्तदा क्यों कहा मुझे ये बताओ भाई जी। हां ये मारिफा है, रजुलुन वो भी नकेरा, आलिमुन वो भी नकेरा। तो जब जुमले में मारिफा भी हो और नकेरा भी हो तो मुब्तदा किसको बनाते हैं, मारिफा को, और खबर किसे बनाते हैं, नकेरा को। शाबाश। तो जैदुन मरफू लफ्जन मुब्तदा। आगे
रजुलुन मरफू लफ्जन खबर,
रजुलुन मरफू लफ्जन खबर। अच्छा मरफू क्यों,
खबर,
खबर है, और खबर क्या होती है, मरफू। लफ्जन क्यों कहा आपने,
इसके
रफा पर हम तलफुज कर रहे हैं, करके दिखाओ।
रजुलुन,
रजुलुन, नसब पर तलफुज करो। रजुलन, जर पर करो। रजुलिन, मालूम हो इस पर तीनों तरह के एराब लफ्जी आते हैं। जी खबर, खबर जी आपकी बात ठीक है खबर, लेकिन आगे भी जोड़ना है हमने भाई। चलो खबर आगे, चलो आगे तरकीब करें। रजुलुन मरफू लफ्जन खबर जी,
आलिमुन
जी
मरफू लफ्जन
जी
खबरसन,
आलिमुन मरफू लफ्जन खबर सानी, खबर सानी, दो खबरें भाई। वो नहीं, ये तरकीब अभी हमने शुरू ही नहीं की, दो दो जुमलों दो खबर आए, जहां जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं जाब्तों से हल करने की कोशिश करें भाई। आपको कैसे पता चला कि ये मौसूफ है, साबते जो मैंने लिखवाए हैं, दो नकेरा इकट्ठे आ गए, रजुलुन भी नकेरा, आलिमुन भी
नकेरा।
और किया आपने, रजुल اب معرفہ کی قسمیں لگاؤ اس پر فوراً بھائی، عادت بناؤ اپنی، تیزی سے اس پہ دیکھو، رجل ان کسی کا نام ہے، ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، اس پر الف لام ہے، یہ کسی کی طرح مضاف ہے نہیں، ان میں سے کوئی نہیں، معلوم نکرہ ہے. اب عالم ان پر بھی یہی چیزیں لگاؤ، آپ دیکھیں گے وہ بھی کیا ہے، نکرہ ہے. دو نکرہ اکٹھے آ گئے، جب دو نکرہ ہیں تو عموماً، ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن عموماً، پہلے کو کیا بناتے ہیں موصوف، بعد والے کو کیا بناتے ہیں صفت. جی کیجئے ترکیب. رجلن مرفوع لفظان موصوف. مرفوع کیوں؟ اوہو، موصوف تو منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. مرفوع کیوں؟ خبر ہے. یہ کیا ہے؟ خبر. توجہ ہے جی. یہ خبر ہے، لیکن ابھی خبر کہنا نہیں، سارے چیزیں خبر کے ساتھ جو جڑ جائیں گی پھر اس کو ہم خبر کہیں گے. یہ ہے ویسے خبر ہی، رجلن کیا ہے؟ خبر. لیکن ہمارے ہاں جو ترکیب رائج ہے اس میں ساری چیزوں کو جوڑ کر پھر اس کو خبر بناتے ہیں، خبر کہتے ہیں، ورنہ یہ ہے خبر. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس پر رفع کیوں آیا؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ خبر ہے. جی آگے، مرفوع لفظان خبر. آگے جی، ہاں تو یہاں اس کو رجلن کو یوں کہو، مرفوع لفظان موصوف. مرفوع رجلن، مرفوع لفظان موصوف. مرفوع کیوں؟ خبر ہے. ابھی آپ نے زبان سے نہیں کہا لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے، خبر. اسی لیے رفع آیا. رفع کے لیے وجہ چاہیے، بغیر وجہ کے رفع نہیں آئے گا. ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے نصب کیوں نہیں پڑھتے، جر کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ خبر. اور ہم نے پڑھا ہے خبر بھی مرفوع ہوتی ہے اور مبتدا بھی مرفوع. تو رجلن مرفوع لفظان موصوف. خبر ابھی آپ نے کہا ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو دل میں پتا ہے یہ کیا ہے، خبر. باقی کو جوڑ کر آپ کہیں گے. تو یہ مرفوع، اب میں نے پوچھا مرفوع کیوں، اب آپ جواب دیں گے کہ یہ کیا ہے، خبر ہے. لفظن کیوں، اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، کر کے دکھاؤ. رجلن نصب پہ تلفظ کرو، رجلن جر پر کرو، رجلن. دیکھا معلوم ہو اس پر تینوں طرح کے اعراب لفظی آتے ہیں. جی آگے موصوف، آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے؟ نکرہ کے بعد پھر نکرہ آیا تو یہ آپس میں کیا ہے معلوم ہوا، موصوف صفت. اچھا آگے چلیے، شاباش. عالم مرفوع لفظان صفت، مرفوع لفظان صفت. اچھا مرفوع کیوں، کیا معنی صفت ہے، بات پوری کریں. صفت ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، ہاں موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع، موصوف منصوب ہو تو صفت بھی منصوب، موصوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور. تو یہ صفت ہے اور اس پر وہی اعراب آئے گا جو موصوف پر تھا. اب جوڑیے ان کو، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دیکھا موصوف صفت مل کر کیا بن گئے، خبر. ایک تھا مبتدا اور ایک خبر، دو ہی چیزیں بن گئیں بھائی. تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ایک ایک لفظ کا آپ نے اعراب نکال لیا. اب اس کو ذرا روانی سے پڑھ دو، جملے کو روانی سے پڑھ دو. زیدن رجلن عالمن، زیدن رجلن عالمن. آپ نے صرف میں یرملونا والا ایک قانون پڑھا ہوگا کہ نون ساکن اگر حروف یرملونا سے پہلے آ جائے، یعنی نون ساکن آئے اس کے بعد یرملونا، یعنی یا را میم لام واو نون آ جائے، یا را لام میم واو نون آ جائے، پہلے کون آئے نون، یعنی یرملونا والے حروف سے پہلے کون آ جائے، نون ساکن. تو نون کو بھی اسی حرف کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں. تو زیدن کے بعد یہاں کیا ہے، را. زیدن رجلن، را ہے نا رجل کی، اور زیدن کے آخر میں کیا ہے، نون ساکن ہے تنوین والا. تو حروف یرملونا سے پہلے کیا آ گیا، نون ساکن. تو اس نون کو بھی را کر کے را میں کیا کریں گے، ادغام. کیسے پڑھیں گے، ہاں زید الرجل عالم. اور ویسے اسی طرح بھی پڑھ دیں، زید الرجل عالم، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اب آپ نے عبارت حل کر لی، اعراب حل کر لیا، اب اس کا ترجمہ کیجئے. ہاں بھائی ترجمہ کیجئے. جو کہ عالم ہے، شاباش. زید ایسا آدمی ہے جو عالم ہے. دیکھو موصوف صفت آئے یا نہیں آئے، اور رجل عالم معرفہ ہیں نکرہ ہیں، نکرہ ہیں. تو نکرہ کے ترجمے کے دو طریقے تھے. پہلا کیا طریقہ تھا؟ صفت کو کیا کر دو؟ مقدم کر دو. رجل عالم، اردو ترجمہ کرو، رجل عالم. پہلے طریقے کے مطابق ترجمہ کرو، عالم آدمی. صفت کو مقدم کر دو، رجل عالم. پھر دہراؤ، ترجمہ کرو، عالم آدمی. دوسرا طریقہ، ایسا آدمی جو کہ عالم ہے. اب سارے کا ترجمہ کرو، زید رجل عالم. پہلے طریقے کے مطابق کرو،
زید عالم آدمی.
بھائی رجل عالم کا کیا ترجمہ تھا؟ رجل عالم کا کیا ترجمہ کیا؟ عالم آدمی. بس اس کو زید کے ساتھ جوڑ دو، زید عالم آدمی ہے، زید عالم آدمی ہے. لہذا دوسرے طریقے کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بہترین ترجمہ ہو گیا، زید عالم آدمی ہے. لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر کے دیکھ لیں، دوسرا طریقہ لے آؤ. دونوں نکرہ ہیں، نکرہ میں کیا کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے کیا لے آتے ہیں؟ لفظ پورے. پھر دہراؤ، کس سے پہلے؟ موصوف سے پہلے ایسا یا. اب بولو، زید ایسا آدمی ہے جو کہ عالم ہے. دیکھو دونوں بہترین ترجمے ہو گئے یا نہیں، یہ طریقہ ہے حل کرنے کا. اگلا جملہ لکھئے، زید العالم، العالم شاعر، شاعر. جی توجہ سے، ہاں بھائی ترکیب کیجئے.
زید مرفوع لفظا مبتدا.
شاباش، زید مرفوع لفظا مبتدا. مرفوع کیوں؟ آپ نے تین لفظ کہے، مرفوع لفظا مبتدا، ہر ایک کی وجہ بتانی پڑے گی. مرفوع کیوں؟
مبتدا،
مبتدا ہے. لفظا کیوں؟
اس کے رفع پر ہم
تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھاؤ،
زیدن،
زیدن. شاباش، مبتدا. جی آگے،
العالم.
جی
مرفوع لفظا.
جی
اسم فاعل،
العالم مرفوع لفظا اسم فاعل. ہاں اس میں فائل کی ترکیب ہم گہرائی میں جا کر کریں گے، ابھی یہ بتانا چھوڑ دیں کہ اس میں فائل ہے یا کیا ہے.
العالم مرفوع لفظا صفت اول.
العالم، شاباش، العالم مرفوع لفظا صفت اول. جی مرفوع کیوں؟
یہ اس کے زید ان کی صفت اول ہے.
ہاں کیونکہ یہ صفت ہے، اور صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے؟ موصوف پر. توجہ ہے، تو مرفوع، اور کون سا مرفوع؟
لفظن.
لفظن مرفوع کیوں کہا؟
العالم، کیونکہ اس کے رفع پہ ہم تلفظ،
اس کے رفع پر تلفظ کرو،
العالم،
العالم، العالم. اچھا بھائی موصوف ہے زیدن، اس پر تنوین آ رہی ہے، اور العالم اس کی صفت ہے، اس پر تنوین کیوں نہیں لا رہے؟ شاباش، تو آپ نے یہ نہیں کہنا موصوف پہ تنوین ہے تو صفت پہ بھی تنوین آئے گی، یا موصوف پہ تنوین نہیں ہے تو صفت پہ بھی تنوین نہیں آئے گی. نہیں نہیں، اعراب ہر لفظ پر اس کے مطابق آئے گا. زیدن پر تنوین آ سکتی ہے تو آ گئی، العالم پر تنوین نہیں آ سکتی تو نہیں آئی. ہاں رفع دونوں پر ہونا چاہیے، پھر وہ رفع چاہے لفظاً ہو کسی پر تقدیراً ہو، کسی پر محلاً ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہونا رفع چاہیے. تو زیدن مرفوع لفظاً
مبتدا.
اچھا آپ العالم کو آگے صفت بنا رہے ہیں، تو مبتدا نہ کہو نہ موصوف کہو، ہے تو مبتدا ہی ہے تو مبتدا. لیکن ساری چیزیں جوڑنے کے بعد اس کو ہم مبتدا کہیں گے. ہے ویسے مبتدا، اس پر رفع آیا ہی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ मुबतदा है। मौसूफ होने से एराब का पता नहीं चलता, मुबतदा होने से एराब का पता, तो ये है मुबतदा। लेकिन जब आप आगे सिफत जोड़ रहे हो तो उस वक्त वो मुबतदा की बात अभी दिल में रखें, हमें सिर्फ ये बता दें ये मौसूफ है। तो जैदुन मरफू लफजान मौसूफ, तवज्जो है, जैदुन मरफू लफजान मौसूफ, अल आलिमु मरफू लफजान सिफत अव्वल, शाबाश। आगे
शाइरुन
जी
मरफू लफजान सिफत सानी,
शाइरुन मरफू लफजान सिफत सानी, मरफू क्यों?
क्योंकि ये जैदुन मरफू है,
हां क्योंकि ये सिफत है और सिफत पर वही एराब आता है जो किस पर आता है, मौसूफ पर। जी मरफू लफजन क्यों कहा?
इसके रफा पे तलफ,
इसके रफा पर हम तलफुज कर रहे हैं। शाइरुन नसब पर तलफुज करें, शाइरन जर पर करें, शाइरिन मालूम है इस पर तीनों तरह के एराब लफ्जी आते हैं। तो ये मरफू लफजन सिफत सानी, सिफत आपको कैसे पता चला ये सिफत सानी है?
क्योंकि शाइर होना सिफत
है। जो जाब्ते मैंने लिखवाए हैं, हां भाई ये तरकीब ठीक कर रहे हैं जी, आप बताइए भाई ये तरकीब ठीक कर रहे हैं, खुद गौर करो। इसमें फाइल तो है, उससे हमारी बहस नहीं, मैंने इसमें फाइल के कहने से तो कुछ रफा नसब जर का पता चलता है जी, कैसे भाई? मैंने कहा था मौसूफ सिफत में मुताबकत होती है, मौसूफ मारिफा हो तो सिफत भी क्या होगी, मारिफा, मौसूफ नकिरा हो तो सिफत भी क्या होगी, नकिरा। तो जैद है मारिफा या नकिरा? मारिफा। अल आलिम क्या है, मारिफा या नकिरा? मारिफा। और शायर मारिफा है या नकिरा? नकिरा है भाई, उसको सिफत बना ही नहीं सकते आप, कोई सूरत ही नहीं है। कीजिए तरकीब। हां शाबाश, ये क्या बनेगी? खबर। अगर आप दोनों को सिफत बना देंगे तो खबर महजूफ निकालना पड़ेगी। तरकीब तकरीबन हल हो गई, अब दोबारा करो और ठीक तरीके से तरकीब कीजिए। शाबाश।
जैदुन मरफू लफजन मौसूफ,
जैदुन मरफू लफजन मौसूफ, शाबाश।
अल आलिमु मरफू लफजन सिफत,
हां सिफत ना कहो सिफत कहो, सिफत अरबी में गोलता आती है, इसके सिफत को कैसे लिखते हैं आखिर में, गोलता। और अरबी में जहां भी गोलता आए उसके माकबल वाले हर्फ पर हमेशा जबर होती है, सिफतुन जारिबतुन काइमतुन, गौर कर रहे हैं? तो ये इस गोलता से माकबल हमेशा मफतूह होता है।
अल आलिमु मरफू लफ्जन सिफत,
अल आलिमु मरफू लफ्जन सिफत, शाबाश। आगे
शाइरुन,
हां उसको छोड़ो, मौसूफ सिफत मिलकर मुबतदा, मौसूफ सिफत मिलकर मुबतदा। ये जैदुन पर रफा क्यों आया था? क्योंकि ये क्या है, मुबतदा है, लेकिन हमने सिफत को जोड़कर अब बता दिया कि ये सारा क्या है, मुबतदा है। हकीकत में जैद है मुबतदा, आलिम उसकी सिफत है, लेकिन हमारे यहां यूं राइज है, यूं कहते हैं कि मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर क्या हुआ, मुबतदा हुआ। हालांकि हकीकत में मुबतदा कौन है, जैद है, आलिम उसकी सिफत है जी। मौसूफ सिफत मिलकर मुबतदा। आगे
शायरुन मरफू लफ्जन खबर,
शायरुन मरफू लफ्जन खबर जी, जोड़िए सबको,
मुबतदा खबर मिलकर,
मुबतदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। एक एक लफ्ज का एराब आप सबको पता चल गया, अब इसको रवानी से पढ़ दो एराब के साथ।
जैदुन,
जैदुन देखो उसके आखिर में नून है, नून साकिन तनवीन है, और अल आलिम इसके शुरू में अलिफ तो गिर गया, आगे लाम साकिन, अल आलिम में हमजा वसली है ना, अलिफ लाम का हमजा वसली दरमियान इबारत में गिर जाता है, तो आगे लाम साकिन और उससे माकबल जैदुन का नून साकिन, तो इज्तिमाई साकिनैन आ गया। और इज्तिमाई साकिनैन जब भी आ जाए तो अव्वल अगर हरफ मद्दा हो तो उसको गिरा देते हैं, और हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं, वाओ अलिफ या, वाओ अलिफ और या, जब माकबल की हरकत इनके मुआफिक हो, यानी वाओ से पहले जम्मा हो, अलिफ से पहले फतहा हो, या से पहले कसरा हो, तो फिर ये इनको हरूफ मद्दा कहते हैं। توجہ ہے, توجہ سے سنو بھائی, پھر سن لو صرف کی بات. واو الف اور یا ان سے ماقبل کی حرکت ان کی ان کے موافق ہو تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں. مد دیکھو خود غور کر لو, یہ آپ کو یاد, ترجمے پہ غور کر لو آپ کو یاد ہو جائے گا. مد کا معنی کھینچنا, کھینچنا. اگر واو سے پہلے پیش ہو, واو سے پہلے پیش ہو تو اسی پیش کو لمبا کر دیتا ہے واو. حضرموت, میم واو اور لمبی تا ہے, حضرموت. واو سے واو ساکن ہے اور ماقبل میم پر کیا ہے؟ پیش. تو اس واو نے یہ کیا ہے؟ حرف مدہ. اس نے کیا فائدہ دیا؟ اسی پیش کو لمبا کر دیا. مد ان کا معنی کھینچنا, اس کو کیا کر دیتا ہے؟ کھینچ کر لمبا کر دیتا ہے. الف سے ماقبل تو ہمیشہ فتحہ آئے گا اور کچھ نہیں آ سکتا, لیکن واو اور یا سے ماقبل حرکت ان کے موافق بھی ہو سکتی ہے اور فتحہ بھی آ سکتا ہے, فتحہ بھی آ سکتا ہے. جیسے حضرموت واو سے ماقبل میم پر پیش ہے, یہ حرکت واو کے موافق ہے, واو کے. اور واو سے ماقبل زبر بھی آ سکتا ہے, فتحہ بھی آ سکتا ہے. موتن, موتن. اور اسی طرح یا, یا سے ماقبل کسرہ بھی آ سکتا ہے اور فتحہ بھی آ سکتا ہے. الف پھر دوہراؤ, الف سے ماقبل صرف کیا آئے گا؟ فتحہ. واو سے ماقبل ضمہ بھی آ سکتا ہے اور فتحہ بھی, اور یا سے ماقبل کسرہ بھی آ سکتا ہے اور فتحہ بھی. تو واو سے ماقبل اگر ضمہ ہو, الف سے ماقبل فتحہ ہو اور یا سے ماقبل کسرہ ہو تو ان کو حرف مدہ کہیں گے, یہ اسی حرکت کو لمبا کر دیتے ہیں, کھینچ دیتے ہیں. جیسے حین, حین, ہا یا اور نون. حین ہا کے نیچے کیا ہے؟ زیر, آگے یا ہے تو اس یا کو حرف مدہ کہیں گے. اس نے اسی کسرہ کو کیا کر دیا؟ کھینچ کر لمبا کر دیا. حین کہا آپ نے, حین بھائی. لیکن اگر واو یا سے ماقبل فتحہ ہو پھر ان کو حرف مدہ نہیں کہیں گے, پھر ان کو حرف لین کہیں گے, لام یا نون, حرف لین. موتن, جی واو سے ماقبل کیا؟ فتحہ, لہذا اس کو لمبا نہیں کرنا, یہ حرف مدہ نہیں ہے. موتن. چنانچہ اسی لیے اذان دیتے ہیں فجر کی, الصلاۃ خیر من النوم. واو سے ماقبل کیا ہے؟ فتحہ ہے, لیکن اذان دینے والے عموماً اس کو لمبا کرتے ہیں. نوم بھائی, یہ حرف مدہ ہی نہیں ہے, لمبا کیوں کر رہے ہو؟ عرب کی اذان آپ سنیں, وہ کہیں گے الصلاۃ خیر من النوم, ذرا بھی نہیں لمبا کریں گے. الصلاۃ خیر من النوم. تو یہ نوم, یہ واو کیا ہے؟ حرف مدہ نہیں ہے. اسی طرح یا سے ماقبل الکسرہ ہو تو وہ یا کیا ہے؟ حرف مدہ. اور اگر یا سے ماقبل فتحہ ہو تو پھر وہ حرف لین ہے. جیسے میتن, میم یا تا, میتن. تو واو الف اور یا جب ساکن ہو اور ماقبل کی حرکت ان کے موافق ہو تو ان کو کیا کہیں گے؟ حروف مدہ. اور واو اور یا سے ماقبل اگر حرکت فتحہ کی ہو تو پھر ان کو کیا کہیں گے؟ حرف لین کہیں گے, لام یا نون. اچھا کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, زیدن العالم شاعر, ترکیب ہم کر رہے تھے. زیدن کے آخر میں کیا ہے؟ نون ساکن, تنوین ہے نا. تنوین کس کا نام ہے؟ نون ساکن. دیکھو یاد رکھو, تنوین نون ساکن کا نام ہے. میں آپ کے سامنے کچھ حروف لکھوں گا, آپ نے اس کو پڑھنا ہے. زا یا دال, اور دال کے اوپر میں نے دو پیش بھی ڈال دیے. اب اس کو پڑھو ذرا. زیدن, بھائی میں نے تو زا یا دال لکھا ہے, آپ یہ نون کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ وہ تنوین ہے جو آپ نے اوپر دال کے اوپر لکھی ہے. تو تنوین دراصل کس کا نام ہے؟ نون ساکن کا نام ہے. تو زیدن کے آخر میں تنوین آگے, یعنی نون ساکن آگے. العالم اس کی صفت ہے, اور اس میں حمزہ کون سا ہے؟ وصلی, وہ گر گیا. اب آگے لام بھی ساکن, ماقبل میں نون بھی ساکن اور آگے لام بھی ساکن. تو اجتماع ساکنین آ گیا, دو ساکن جمع ہو گئے. اور اجتماع ساکنین جب آئے اور ان میں سے اول حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اس کو. لیکن نون اور لام ان میں سے اول کیا ہے؟ نون. کیا یہ حرف مدہ ہے؟ یہ تو حرف مدہ ہی نہیں ہے. حرف مدہ تو وہ الف اور یا کو کہتے ہیں. تو جب اول حرف مدہ نہ ہو تو پھر اس کو کسرہ کی حرکت عموماً دے دیتے ہیں. تو پھر اس نون کو کون سی حرکت دے دیں گے؟ کسرہ والی. کیسے پڑھیں گے؟ زید العالم. توجہ ہے, پڑھیے بھائی. زید العالم شاعر. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ زید العالم شاعر. ترجمہ کیجئے.
زید ایسا عالم ہے.
پھر ایسا موصوف صفت آئے یا نہیں اس جملے میں؟ اور وہ موصوف صفت معرفہ یا نکرہ ہیں؟ معرفہ ہیں. تو معرفہ والا طریقہ اس میں الرجل الشجاع, پہلا طریقہ کیا تھا؟ وہ بہادر آدمی. اور دوسرا طریقہ کیا تھا؟ وہ آدمی جو کہ بہادر ہے. جی, اس کے مطابق ترجمہ کریں.
وہ زید جو کہ عالم ہے.
جی,
اور شاعر.
ہاں, اور نہیں, وہ شاعر ہے. وہ دوسرے طریقے سے ترجمہ کر رہے ہیں. وہ زید جو کہ عالم ہے وہ شاعر ہے. وہ شاعر ہے. اور پہلے طریقے سے کر لو تو ترجمہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. وہ عالم زید شاعر ہے. وہ عالم زید شاعر ہے. بلکہ وہ ہم کس لیے لاتے ہیں؟ اشارہ کرنے کے لیے کسی متعین کی طرف. لیکن جب نام ہے, نام تو ویسے متعین ہوتا ہے, تو یہاں وہ لانے کی ضرورت بھی نہیں. یوں ترجمہ کرو, عالم زید شاعر ہے. عالم زید شاعر ہے. طریقہ سمجھ میں آ گیا. آگے لکھئے بھائی, زید العالم رجل کریم. زید العالم رجل کریم. جی, جملہ مکمل ہوا. اعراب ترکیب آپ نے کرنی ہے. چلیے بھائی, ترکیب کیجئے بھائی. جب کوئی جملہ ہے, سب سے پہلے ذرا جلدی جلدی غور کر لیا کرو, معرفہ کون سے ہیں, نکرہ کون سے ہیں. پھر دیکھ لیا کرو معرب کون سے ہیں, مبنی کون سے ہیں. بالکل آسان ہے, چند دن مشق کریں گے فوراً آپ کے لیے آسان ہو جائے گا معرفہ اور نکرہ کی پہچان. معرفہ کی وہ 6-7 قسمیں دیکھو, ان میں سے کون کون سی ہے اور کون سی نہیں. اور مبنی, مبنی میں نے بتایا کہ ابھی صرف وہ 3 یاد رکھو. کون سے؟ تمام ضمیریں, اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ. بس اگر وہ نہیں تو معلوم ہوا یہ معرب ہیں بھائی. جی, کیجئے ترکیب.
زید الموصوف
اعراب سب سے پہلے.
زید المرفوع
تلفظ کرو, مرفوع ہے تو تلفظ کر کے بتایا کرو. زیدن, ہاں یوں کرو, زیدن مرفوع. جب مرفوع کہہ رہے ہو تو ہمیں رفع پر تلفظ بھی ساتھ کر کے بتایا کرو. زیدن,
زیدن مرفوع,
مرفوع لفظان, مرفوع لفظان, موصوف. شاباش, زیدن مرفوع لفظان موصوف. مرفوع کیوں؟ مرفوع کیوں؟ موصوف مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ, مبتدا ہے. یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا زیدن مرفوع لفظان موصوف. مبتدا کا لفظ انہوں نے نہیں کہا, لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. کیونکہ رفع موصوف کہنے سے رفع کا پتہ نہیں چلتا. موصوف تو منصوب بھی ہو سکتا ہے, مجرور بھی ہو سکتا ہے. تو مبتدا البتہ مرفوع ہوتا ہے, تو وہ پھر آخر میں جوڑ کر یہ بتائیں گے. تو زیدن مرفوع لفظان موصوف. اب بتائیے مرفوع کیوں؟ مبتدا ہے. لفظان کیوں کہا؟
اس کے رفع پر ہم تلفظ
کر رہے ہیں. کر کے دکھاؤ. زیدن نصب پہ تلفظ کرو, زیدن جر پر کرو, زیدن اس پر تینوں طرح کے اعراب لفظی آتے ہیں. مرفوع لفظن موصوف, تیسرا لفظ آپ نے کہا تھا موصوف, اب ہمیں بتائیں موصوف آپ نے کیوں کہا؟ دیکھو آپ سے کوئی پوچھے آپ اس کو کیسے سمجھاؤ گے, مجھے اس طرح بتاؤ آپ نے موصوف کیوں کہا؟ ہاں بھائی, پھر معرفہ ہوگا تو موصوف ہوگا ہمیشہ, مبتدا ہوگا تو موصوف ہوگا ہمیشہ. ہاں بھائی آپ بتائیے, یہ سب چیزیں آپ کو آتی ہیں, بس مشق نہیں ہے, یہ انشاءاللہ دو چار دن میں آپ بتانا شروع کر دیں گے. جی انہوں نے کہا موصوف, میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں موصوف کیوں کہا انہوں نے, مبتدا تو ہے انہوں نے بتا دیا. ہاں بھائی آپ بتائیے موصوف کیوں ہے؟
کیونکہ اس کے بعد بھی معرفہ ہے,
کیونکہ معرفہ کے بعد معرفہ رہا ہے, زیدن علم ہے وہ بھی معرفہ, العالم یہ الف لام اس پر ہے یہ بھی معرفہ, اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب ایک معرفہ کے بعد دوسرا معرفہ یا تیسرا معرفہ آ جائے تو وہ عموماً کیا بنیں گے؟ موصوف صفت بنیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو زیدن مرفوع لفظان موصوف. آگے چلیے,
العالم
جی صفت. اعراب بولو, العالم مرفوع, کون سا مرفوع؟ لفظان صفت, مرفوع لفظان صفت. مرفوع کیوں؟ معرفہ ہو تو مرفوع ہوتا ہے, صفت ہو تو مرفوع صفت. پوری بات کریں کہ موصوف پر رفع ہو تو صفت پر بھی کیا آتا ہے؟ رفع. وہ مرفوع تھا تو یہ بھی مرفوع ہے, تو مرفوع. دیکھو ذرا پہلے جملے پہ آؤ, سب سے پہلے جملے پہ, زیدن رجلن عالمن, میں نے زید کے بارے میں پوچھا آپ نے کہا مرفوع, میں نے پوچھی وجہ پوچھی کیوں مرفوع آپ نے کہا مبتدا ہے, پھر آگے رجل کا لفظ آیا میں نے اس کے بارے وہ بھی مرفوع تھا, میں نے پوچھا کیوں مرفوع آپ نے کیا کہا؟ خبر ہے. کیا ہے؟ خبر ہے. اور عالمن بھی میں نے پوچھا آپ نے کہا مرفوع, تو میں نے پوچھا کیوں مرفوع آپ نے کیا کہا؟ صفت ہے. دیکھا ہر ایک کی وجہ الگ ہے, رفع تینوں پر, لیکن زید کیوں مرفوع؟ مبتدا. رجلن کیوں مرفوع؟ خبر. اور عالمن کیوں مرفوع؟ کیونکہ یہ رجل کی صفت ہے, اور صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے؟ موصوف پر. اسی طرح اگلا جملہ تھا زیدن العالم شاعرن, میں نے پوچھا تو آپ نے کہا زیدن مرفوع, میں نے پوچھا کیوں آپ نے کہا مبتدا ہے. العالم آپ نے کہا مرفوع, میں نے پوچھا کیوں آپ نے کیا کہا؟ یہ زید کی صفت ہے, وہ مرفوع تھا یہ بھی مرفوع. اور میں نے شاعر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا مرفوع, اور وجہ کیا ذکر کی؟ خبر ہے. دیکھو تینوں مرفوع ہیں لیکن وجہ ہر ایک کی الگ ہے, ایک مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع, ایک صفت ہونے کی وجہ سے مرفوع, اور ایک خبر. یہاں بھی اسی طرح ہے. پھر دیکھیں یہ آخری جملہ, زیدن العالم رجل کریم, اس کی یہ ترکیب کر رہے ہیں, زیدن مرفوع لفظن موصوف, مرفوع کیوں؟ مبتدا ہے. لفظن کیوں؟ اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں. دیکھو رفتار آپ لوگوں کی بڑھ رہی ہے. موصوف کیوں کہا؟ موصوف کیونکہ آگے کیا آ رہی ہے؟ صفت. معرفہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے. ہاں مرفوع لفظن موصوف. آگے چلو, العالم مرفوع لفظن صفت. مرفوع کیوں؟ مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ صفت ہے. یہ کیا ہے؟ اور صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے؟ موصوف پر. اگر ماقبل میں موصوف پر نصب ہوتا تو اس پر بھی کیا پڑھتے؟ نصب. اگر اس پر جر ہوتا تو اس پر بھی کیا پڑھتے؟ جر. تو العالم مرفوع لفظان صفت. مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ صفت ہے. لفظن کیوں کہا؟ اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھاؤ. العالم نصب پر تلفظ کرو, الف لام کے ساتھ, العالم جر پہ تلفظ کرو العالمی جی. اب جوڑیے بھائی موصوف صفت مل کر مبتدا, کیونکہ آگے نکیرا شروع ہو رہے ہیں وہ تو صفت نہیں بن سکتے, تو یہ موصوف صفت مل کر مبتدا. آگے کیجئے ترکیب
راجلون
جی. سب سے پہلے اعراب بولنا ہے
راجلون
مرفوع مرفوع لفظان. آگے بولو بات پوری نہیں ہوئی.
نکیرہ
تو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں. کیا کہیں گے موصوف بھائی دو نکیرہ اکٹھے آ رہے ہیں تو آپس میں کیا بنتے ہیں موصوف صفت. تو جی تو آراجولون مرفوع لفظان موصوف. توجہ ہے مرفوع لفظان موصوف. اب بتاؤ مرفوع کیوں؟ مبتدا تو ابھی گزر گیا, موصوف صفت مل کر مبتدا تو پیچھے گزر گیا. اب ہم آگے چلے گئے رجل کریم پر خبر ہے, وہ ترکیب کر رہے ہیں تو صرف سنا نہ کریں خود حل کرتے رہیں, ادھر سنتے بھی رہیں حل بھی کوشش بھی کریں کہ آپ ترکیب جلدی حل کر لیں. جی کیجئے رجلون مرفوع لفظان موصوف. مرفوع کیوں؟
خبر.
کیونکہ خبر ہے. خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. لفظان کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھاؤ
رجلون.
نصب پہ تلفظ کرو
رجلان.
جر پہ کرو
رجلین.
معلوم ہو اس پر تینوں طرح کے اعراب لفظی آتے ہیں, یہ جو رجل کا لفظ ہے. تیسری بات آپ نے کہی تھی موصوف مرفوع لفظن موصوف. موصوف کیوں کہا آپ نے؟ شاہ, کیونکہ دو نکیرہ اکٹھے آ گئے تو دوسرا کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. دو معرفہ اکٹھے آئے تھے زید اور العالم, تو زید موصوف العالم اس کے. دو نکیرہ اکٹھے آ گئے رجل اور کریم, تو رجل موصوف اور کریم اس کی صفت. تو رجل مرفوع لفظاً موصوف. آگے ترکیب کیجئے کریم.
کریم مرفوع
اعراب کے ساتھ پڑھو
مرفوع لفظاً.
مرفوع ہے تو رفع کا تلفظ کر کے بتاؤ کریم مرفوع. یوں کہو کریم
مرفوع
لفظاً
صفت.
شاباش. مرفوع لفظان صفت. رفتار آپ کی انشاءاللہ ایک آدھ دن میں آپ دیکھیں گے بڑھ جائے گی. اب باقاعدہ ترکیبیں شروع ہو گئی ہیں. تو مرفوع لفظان صفت. اب وجہ بتاؤ مرفوع کیوں؟
خبر
تو رجل تھے
صفت.
یہ صفت ہے اور صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے, اور رجل پر کیا تھا؟ وہ رفع تھا اس پر. تو اس پر بھی کیا آئے گا؟ رفع آئے گا بھائی. تو یہ مرفوع لفظان صفت. لفظان کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھاؤ
کریم.
نصب پر تلفظ کرو
کریم.
جر پر کرو کریم. معلوم ہوا یہ جو کریم لفظ کہیں کبھی عبارتوں میں آ جائے تو اس پر تینوں طرح کے اعراب لفظی ہوتے ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جی جوڑیے اب
رجل
موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر. پہلے زید اپنی صفت سے مل کر مبتدا بن گیا تھا, اب یہ رجل اپنی صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر. دو چیزیں بن گئی. تو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب ایک ایک لفظ کا اعراب نکل آیا. اب اس جملے کو روانی سے پڑھ دو. عبارت اس طرح حل ہوتی ہے, ایک ایک لفظ کا اعراب جلدی جلدی نکالتے جاتے ہیں اور پھر اس کو روانی سے پڑھ دیتے ہیں. جی پڑھیے بھائی سارے جملے کو روانی سے پڑھ دیں.
زیدن
شاباش.
رجل کریم.
شاباش. دیکھا زیدن العالم رجل کریم. دیکھو وہ زیدن العالم. دیکھو نون کے نیچے یہ زیر بھی لے آئے. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ اس طرح عبارت کوئی مشکل نہیں ہے. آپ انشاءاللہ ایک ہفتے میں اچھی عبارت پڑھنے لگیں گے. زید العالم رجل کریم. زید بھی مرفوع, العالم بھی مرفوع, رجل بھی مرفوع, کریم بھی مرفوع, وجہ میں پوچھتا ہوں تو آپ ہر ایک کی وجہ الگ بتاتے ہیں. زید کے بارے میں پوچھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے. اور عالم کے بارے میں پوچھتا ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے کہ یہ کیا ہے صفت ہے. اور رجل کے بارے میں پوچھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ مرفوع خبر ہے. اور کریم کے بارے میں پوچھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ کریم کیا ہے رجل کی صفت ہے اس لیے مرفوع ہے. تو زید العالم رجل کریم. جی ترجمہ کیجئے. زید العالم موصوف صفت ہیں ان کا الگ ترجمہ کر لو. رجل کریم یہ بھی موصوف صفت ہیں ان کا الگ ترجمہ کر لو. پھر دونوں کو جوڑ کر پورے جملے کا ترجمہ کر لو. زید العالم ترجمہ کرو. زید العالم معرفہ ہے نکرہ ہے. اس کا کیا طریقہ تھا؟ پہلا طریقہ عالم زید. وہ عالم زید. لیکن یہاں وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں, میں نے ابھی بتایا کیونکہ زید متعین ذات کا نام ہے. عالم زید یہ پہلے موصوف صفت کا ترجمہ ہو گیا. دوسرے کا ترجمہ کرو. رجل کریم. کریم کا ترجمہ کر لیں معزز. رجل کریم معزز آدمی. معزز آدمی توجہ ہے. پہلے موصوف صفت کا کیا ترجمہ؟ عالم زید. دوسرے کا کیا ترجمہ؟ معزز آدمی. اب ان کو جوڑ دو. عالم زید معزز آدمی ہے. عالم زید رجل کریم موصوف صفت ہے نا. اردو میں صفت کو کیا کرتے ہیں؟ مقدم کر دیتے ہیں. کیا ترجمہ بن گیا؟ رجل کریم معزز آدمی. اب ان کو جوڑ دو. عالم زید معزز آدمی ہے. یہ آخر میں ہے لیا, اس سے جملہ پورا ہو گیا. عالم زید معزز آدمی ہے. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح. تو حاصل کلام یہ, آج آپ نے پڑھا, آج آپ نے موصوف صفت کی ترکیب پڑھی. اور موصوف صفت عربی میں آپ جانتے ہیں کہ صفت مؤخر ہوتی ہے, لیکن اردو میں صفت کو کیا کر دیتے ہیں؟ مقدم. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عربی میں صفت مؤخر تھی تو اردو میں بھی صفت کو مؤخر ہی رہنے دو, البتہ موصوف سے پہلے معرفہ کے اندر وہ یا اس کا لفظ لے آؤ, اور نکرہ میں ایسا یا ایسی کا لفظ لے آؤ. توجہ ہے جی. تو خوب اس کا ذرا پڑھ کر آئیں. میں نے قانون لکھوا بھی دیا, اور یہ ترکیبوں پر زبرات دوبارہ نظر ڈالنا, خود اس کو حل کرنا. جتنی محنت کرو گے اتنی جلدی سیکھ جاؤ گے, اتنی جلدی سیکھ جاؤ گے. ایک ہفتے میں فرق دیکھنا کتنا پڑ جاتا ہے. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.